بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو کیوں اس لیے کہ مومنانہ زندگی پابندیوں والی زندگی ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ امیجن کیجئے کہ ہم جیل کے قیدی ہیں کیا جیل کے قیدی کو اپنی مرضی کا کھانا ملتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جب ہم اس دنیا میں پابند زندگی بسر کریں گے نا تو اس کا نتیجہ آخرت میں لہم فی ہما یشتہون جو چاہو گے ملے گا اب چوائس لے لیتے ہیں زندگی کتنے دن کی یہاں بہت بھی لگا لیں 60 میں سے شروع اور آخر نکال دیں شروع میں عقل کوئی نہیں ہوتی بعد میں مزہ ختم ہو جاتا ہے گناہوں کا بس 20 سے 30 سال کی مستی ہے یہ 20-30 سال اگر پابندیوں میں گزر بھی گئے اور وہاں ہمیشہ کی زندگی مل گئی تو فائدے کا سودا کے نقصان کا تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدوں کو پورا کرنے لگ جائے اور ہر وعدہ لکھا ہوا نہیں ہوتا دیکھیں نا آپ جیسے کانٹریکٹس ہوتے ہیں یہاں کانٹریکٹ کا معنی بھی ہے اللہ نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی ہمیں کانٹریکٹ دے دیا تھا کہ تم اس کی بات کو مانو گے اس کی مرضی سے دنیا میں جیو گے مرو گے کچھ عہد فطرت میں لکھے ہوتے ہیں بس آپ دیکھیے کسی ماں باپ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کرتا بچہ کہ آپ میرا خیال رکھیں گے لیکن ماں باپ اپنے بچے کا خیال رکھتے ہیں بوڑھے ماں باپ بچوں کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کرتے کہ تم ہماری ٹیک کیئر کرو گے لیکن انسان اپنے بوڑھے ماں باپ کی ٹیک کیئر کرتا ہے تو ہمیں اس طرح کے سارے عہدوں کو لینا ہے اور دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں با اصول مسلمان بنا دے کچھ جانوروں کی چیزیں ہیں جو ہمارے متعلق نہیں ہے اس وقت مکہ والوں میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو جانوروں کو مختلف طرح سے اپنے بتوں کے نام پہ ڈال دیتے تھے اسی قسم کی چیزیں تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے اس کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے آیت نمبر 3 میں بتایا جائے گا لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کرو قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہو نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہو کون سے حج یا عمرے کے لیے جانے والے ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو شکار عربوں کی گٹی میں پڑا ہوا تھا ان کے بچے شکار ایسے کھیلتے تھے جیسے شاید آج ویڈیو گیمز کھیلی جاتی ہو اب جس چیز کی عادت ہوتی ہے اسی کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے تو احرام میں اس چیز پر پابندی لگا کر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے حکم کو دیکھ کر یہ کوئی اپنی پسند کی چیز چھوڑتے ہیں کہ نہیں ہے تو لہٰذا اس کے بعد جب احرام ختم ہو جائے تو کیا کرو ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار کر سکتے ہو دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو نہیں حقیقت کیا ہے ہائی لائٹ کیجیے گا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان سب میں تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو اللہ سے ڈرو اس کی سزا بہت سخت ہے امت مسلمہ کو ایک بہت خوبصورت حکم ملا یا مشورہ ملا کہ نیکی کے کاموں میں مدد کرو گناہوں پہ نہیں کریں ہم اس کو اپنے لیول پہ سوچتے ہیں جب میں کسی کی مدد کرتی ہوں تو کس کام پہ کرتی ہوں کیا کسی کی گناہ کی کسی رسم محفل کے موقع پہ میں اس کی تیاریاں کرتی ہوں یا میری دوست بیمار ہے تو میں اس کے بچوں کو ٹیک کیئر کر رہی ہوں جب وہ ہاسپٹل ہے تو میں اس کے گھر میں جا کر صفائی کر دیتی ہوں دیکھیے سمپل سا اصول یاد رکھیے نیکیوں کو پھیلانے میں تعاون اور گناہوں اور زیادتی پر کوئی تعاون نہیں صرف اگر اس رول کو مان لیں تو دنیا میں بہت حد تک صفائی ہو سکتی ہے ہم جب لوگوں کے ساتھ بس ایک خدمت برائے خدمت کے نام پہ کرتے ہیں تو بعض دفعہ غلط چیزوں میں بھی تعاون کرنے لگتے ہیں پھر یہاں سے مردار کی لسٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کریں ہم نے پیچھے پڑھا کہ آدم علیہ السلام پر جنت میں صرف ایک پھل حرام تھا یہی پڑھا نا ہمارے پر کتنے پھل حرام ہیں پھل سے مراد کھانے 4 کون کون سے حرمت علیکم المیتہ حرام کیا گیا تم پر مردار مردار کیا ہوتا ہے وہ جانور جو خود سے مر جائے اس کی آگے قسمیں بتائی جائیں گی کون سے مردار اس کو بعد میں دیکھیں گے ودم اور خون بلڈ رننگ بلڈ جو رگوں میں ہوتا ہے گندا خون وہ نہیں کھا سکتے یعنی ہم خون پی نہیں سکتے کسی جانور کا پھر تیسری چیز وہ لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت پک کا گوشت کیوں अल्लाह का हुक्म है। लेकिन आज रिसर्चिस ने बता दिया कि उसके अंदर जिस्मानी तौर पर बहुत सारे नुक्स हैं, गंदा जानवर है, उसके अंदर पसीने के ग्लैंड्स नहीं होते, बदबूदार होता है, इसका गोश्त गंदा होता है और ये अपनी ही मादा से जिना करता है, अपनी गंदगी खा जाता है। इसके अंदर जो एक तो फिजिकल गंदगी है, दूसरी इसकी इखलाकी गंदगी बहुत है, होमोसेक्सुअल होता है, अपनी ही फीमेल से दूसरों से गना करवाता है, तो ये खाने वालों में भी ये सब कुछ आता है। और इसका जिस्म इंसान के जिस्म से बहुत मिलता है, अगर इसको कोई बीमारी होगी वो डायरेक्ट इंसान को लगती है और इंसान उस बीमारी का शिकार होता है। हम इन सारे फायदों को अलग करते हुए सिर्फ इसलिए नहीं खाएंगे कि अल्लाह ने कह दिया हुर्रिमा, तुम्हारे लिए इसको हमने हराम कर दिया। जैसे वो हराम है, उसी तरह उसका खून, उसकी चमड़ी, उसकी खाल, उसके बने हुए जूते, कपड़े और जेब, जो भी चीज होगी वो भी हराम होगा। फिर उसके बाद फरमाया वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, और वो जानवर जो अल्लाह के नाम के बगैर जिबा किया जाए इसको भी नहीं खाना। वो कौन सा होता है? किसी कब्र पे जाके साहिब कब्र की खुशी के लिए, या किसी और ऐसी जगह पे उसको ले जाकर जिबा कर दिया जाए कि जहां अल्लाह के सिवा दूसरा नाम हो। अब डिटेल है मईता की, पहली चीज की डिटेल क्या है, खुद से जानवर के मरने की डिफरेंट सूरतें वो क्या है, वल मुनहनिकत वल मौकूजत वल मुतरद्दियत वल नतीहा, वो जो गला घुटकर या चोट खाकर, बुलंदी से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो, या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सिवाय इसके जिसे तुमने जिंदा पाकर जिबा कर लिया हो, और वो जो किसी आस्ताने पे जिबा हो, बुजुर्गों की कब्रों पे जो लंगर खुलते हैं उसको नहीं खाना। क्यों? कि लोग उसको अल्लाह का दिया हुआ माल समझने की बजाय साहिब कब्र की न्याज समझते हैं और उनकी देन समझते हैं। आपने अल्लाह के नाम पे देना है, आप कहीं भी दे दे, किसी कब्र पे जाके देने की तो जरूरत नहीं है। नीस तुम्हारे लिए ये भी जायज नहीं कि 500 के जरिए से अपनी किस्मत मालूम करो, यानी तीरों से किस्मत मालूम करना कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा, ये सब इफाले फिस्क हैं। आज काफिरों को तुम्हारे दीन की तरफ से सख्त मायूसी हो चुकी है, बस तुम इनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। ये बात सोचने की है। अब देखिए यह जबीहे की बात है, बहुत सारे लोग खासतौर पर जो वेस्ट में रहते हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या करें, हम खाएं कि ना। तो इसको समझ लीजिए कि इस्लामी जबीहा की दो शरायत है। नंबर एक, जब उसको जिबा किया जाए तो उस वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर। ये कहने वाला खुद मुसलमान है तो भी ठीक है, ईसाई है जो अपने ईसाइयत के अकायद में है, यानी कि वो एथियस्ट बन चुका है तो भी ठीक है, इस तरह जियूस भी ये करते हैं तो भी खा सकते हैं। पहली शर्त कि अल्लाह का नाम लेना। दूसरी शर्त क्या है कि उसकी रगे गर्दन काट के उसको छोड़ दीजिए। जानवर के जिस्म से खून गिरता है और आपको पता है कि जिस्म में गंदगी और बीमारियों का कैरियर ब्लड है, सारे जिस्म की गंदगी ब्लड के जरिए से जिस्म से निकलती है। जब जानवर तड़पता है, जाहिर लोग कहते हैं इसको तकलीफ हो रही है, लेकिन ये अल्लाह का कायम करता निजाम है कि उसके जिस्म से वो सारा गंदा खून निकल जाता है जिसमें जर्म्स थे। आप नतीजा हुआ जब जान ठंडी हुई तो बिल्कुल वो साफ खून एंड पे रह के बस उसकी गर्दन काट दो। ये दो शरायत है, दैट्स इट। जो भी कहता है ये दो शर्तें पूरी हुई आप उसको खा लीजिए। और एक शर्त है और दूसरी नहीं है, मसलन जिसको रेगुलर स्टोर्स पे मिलने वाला मीट लोग कहते हैं तो उसमें समझो लोग कहते हैं जी उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ दी थी, उन्होंने टेप्स चला दी थी, छुरियों पे बिस्मिल्लाह पढ़ दी थी, लेकिन कोई भी ये दावा नहीं कभी करेगा कि एक एक जानवर की रग कटी थी। सबको जिसको अपनी जबान में हम झटका कहते हैं, आप इसको अपने ऊपर लीजिए कि आप नीचे खड़ी हैं, 5वीं मंजिल पे एक साहब है जिसे आप कहते हैं मुर्गी चाहिए, तो वो क्या करता है, एक मुर्गी पकड़ता कहता है बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर और 5वीं मंजिल से नीचे फेंकता है, वो मुर्गी नीचे गिरती है और मर जाती है, तो क्या आप उसको खाएंगे? ये मुतरद्दी और नतीहा, यानी जानवर खुद मरता है, उसका सारा गंदा खून जिस्म में रह जाता है, तो लिहाजा ऐसी चीजों को नहीं खाना। वजह क्या है? इन चीजों के खाने से फिर जिस्म पे गंदे असरात आएंगे, अल्लाह ताला ने रोक दिया। अब यह एक सवाल है जो अक्सर लोग करते हैं और मुझे पता है आपके भी जहनों में, तो मैं आपसे खुद ही कह देती हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं अच्छा जी हमारे बहुत सारे अरब बहन भाई खाते हैं, तो पहली बात है कोई अरब खाए या अजम खाए, कानून यही है। ये पीछे से एक मिसकंसेप्शन है, हमने इसको तफसीर में देखा था, मोहम्मद अब्दू हुए एक स्कॉलर थे मिस्री थे, उनका एक दौर का फतवा जो था, जो उनका एक इज्तिहादी गलती थी जिसकी बुनियाद पे उनके दौर में मिस्र में बहुत ज्यादा इख्तलाफात उठे थे, कैद तक हुई थी, उससे बुनियाद लेकर चंद ख्वाहिश परस्त लोगों ने उस बात को आम कर दिया, हालांकि उन्होंने बाद में उस फतवे से रुजू कर लिया था। लेकिन चूंकि इजी बहुत लगता है ना, मैकडोनल्ड चिकन, केंटकी चिकन और फ्राई चिकन और वी कैंट लिव विदाउट दैट, तो जहां खाना पीना आता है वहां लोगों को अक्सर अल्लाह के हुक्म भूलते हैं। मैं तो अक्सर यही सोचती हूँ कि सिर्फ अपनी हेल्थ कॉन्शियस होकर देखें, हम चाहते हैं गंदे खून वाला गोश्त खाएं? वो सारा खून जिस्म ही जाएगा ना। अगर आप इसको पाकी और नापाकी से देखें, और देखिए फिर मोटापा कितना, फिर बीमारियां कितनी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे खाने पीने को हलाल कर दें। और आज मुश्किल क्या है? नेवर नथिंग, हर गली कोने में नहीं मिलता, थोड़े 4 कदम दूर से मिल जाएगा। और ना मिले, क्या गोश्त खाना लाजिम है? और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो दुनिया का मेरा लिए कोई कोना ऐसा नहीं है कि जहाँ मुस्लिम मीट नहीं मिलता। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे। फरमाया यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, और आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी, तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया। बस क्या करो, हलाल और हराम की जो पाबंदियां और कैदें तुम पर लगाई गई, इनकी पाबंदी करो। हाँ, जो शख्स भूख से मजबूर होकर इसमें से कोई चीज खा ले बगैर इसके कि गुनाह की तरफ इसका रुझान हो, तो बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ये है वो आयत जिसने आपको और मुझे उम्मत वसत बनाया था। यहूद इस आयत के नाजिल होने पे इतने दुखी हुए थे कि जब यह आयत नाजिल हुई, और ये नाजिल कब हुई थी? हज्जतुल विदा के मौके पे, जब अल्लाह के नबी अरफात के मैदान में थे, यह आयत नाजिल हुई तो किसी यहूदी ने कहा, काश यह आयत हम यहूद पे नाजिल होती, क्योंकि पीछे से सिलसिला तो वही चल रहा था ना। तो अब खत्म हो गई इस्लाम पे। वो कहते हैं अगर दीन कभी यहूदियत पे खत्म होता हम कितने खुश होते। उनको हमेशा ऑनर अच्छा लगता है। जैसे कोई कह दे कि बस कह दो आज के बाद कोई नया ब्रांड नहीं बनेगा, और इस ब्रांड की फिर कितनी वैल्यू हो जाएगी। तो हजरत उमर ने फिर जवाब दिया था कि तुम कहते हो कि ईद आयत नाजिल होती तो हम ईद करते, हमारी तो उस दिन दोहरी ईद थी, यानी हज का भी मौका था, अगले दिन ईद उल अजहा भी थी। तो लिहाजा आज मुझे और आपको इस आयत पे अमल करते हुए दीन में इजाफों से बचना है। आज हर वो काम जिसको अल्लाह के नबी और उनके साथियों ने नहीं किया, हम नेकी समझ के करेंगे तो वो इस आयत के खिलाफ होगा। अल्लाह ने हमें एक मुकम्मल दीन दिया। ये कहना कि अल्लाह के नबी के दौर में तो मुकम्मल नहीं हुआ, ये बाद में पायलप हुआ और आइमाए कराम की कोशिशों से मुकम्मल हुआ, तो ये इस आयत के भी अगेंस्ट है और अल्लाह के नबी के ऊपर भी इल्जाम है कि आपने लोगों के एक अधूरे और मुश्किल और उलझे हुए दीन पे रखा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो अल्लाह की पसंद है वो हमारी पसंद भी बन जाए। और आप असल दीन को पा के तो देखिए जो लज्जत मिलती है वो किसी और चीज में नहीं मिलती। फिर फरमाया यस्तफ्तून कमास ओहिल्लहुम, लोग पूछते हैं इनके लिए क्या हलाल है। अच्छा, मजे की बात है कि लोग हर दौर में हलाल हराम के सवाल बहुत पूछते हैं, उसी तरह की बात यहां दिखती है। कहो तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी। कितना आसान कर दिया आपके लिए। कोई आपसे पूछता है अच्छा इस्लाम की रोशनी में क्या हलाल है, तो आप इस आयत को याद कर लें, सब कुछ हलाल है। क्या हराम है? जिसके हराम होने पे कोई जवाब आ गया तो कौन सी चीजें हराम हो गई, पीछे ही पड़ चुके हैं। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतु वद्दमु वलहमुल खिंजीर, तो क्या पता चला चीजें अपनी असल से हलाल है। सब्जियां हलाल है, फ्रूट हलाल है, इसी तरह जो चीजें नट्स आप खाते हैं हलाल है, ग्रेन्स हलाल है। जिसके ऊपर हराम की बात आई है उसके अलावा हर चीज हलाल है। कहो तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सुधाया हो, जिनको अल्लाह के दिए हुए इल्म के बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखे इसको तुम भी खा सकते हो, अलबत्ता इस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह के कानून तोड़ने से डरो। इसको हाईलाइट कीजिएगा, अल्लाह के कानून तोड़ने से डरो। कानून शिकनी जुर्म है ना, रूल्स को अवॉइड करो, रूल्स को मानो। तो क्या हम अल्लाह के रूल्स को मानते हैं? 3 सेकंड तक अपना मुहासबा कर लेते हैं, और अगर नहीं कर रहे तो इन अल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह को हिसाब लेते हुए देर नहीं लगती। बात क्या, क्या यौम अहिल्लकुम अत्तय्यिबात, आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई। अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। यहाँ रुक के देखती, इसमें 2 मसले हैं, साथ ही इशारा कर दूं। इस आयत की बुनियाद पे बाज लोग कहते हैं कि देखिए अल्लाह ने कहा कि अहले किताब का खाना हलाल है, तो फिर इसका मतलब क्या, अहले किताब का खाना खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं? तो जवाब इसका नोट कर लीजिए, अहले किताब का कौन सा खाना हलाल है? जो हलाल, अहले किताब आपको शराब डालकर केक बना के खिला दे तो क्या वो हलाल होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ हलाल खाने से मुराद, ताम से मुराद जबीहा है। अगर अहले किताब उसी तरीके से गोश्त को हलाल करता है जैसे मुसलमान करते हैं तो खा सकते हो। दूसरा एक बहुत ही फेमस इशू, वल मुहसनात मिनल मोमिनात, और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल है, ख्वाब अहले ईमान के गिरोह से हों या इन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई। यानी यहूदी और नसरानी औरत से भी तुम निकाह कर सकते हो, बशर्ते कि तुम इनके मेहर अदा करके निकाह में इनके मुहाफिज बनो। ना ये कि आजाद शहवत रानी करने लगे, यानी सिर्फ सेक्स मैटर के लिए, या चोरी छुपे दोस्तियां करो, यानी ढेंढन दोस्तियां फिर भी नहीं करनी। और जिस किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार कर दिया तो इसका सारा कारनामा जिंदगी जाया हो जाएगा और वह आखरत में दिवालिया हो जाएगा। ये भी चूंकि आज वेस्ट में रहने वाले मुस्लिम्स का एक बहुत हॉट टॉपिक है, तो इसको भी चंद मिनट देने पड़ेंगे। आप देखिए कि इस्लाम ने शादी की जो पाबंदियां लगाई, पीछे हम पढ़ चुके दूसरे पारे में, मुशरिका से निकाह हराम है। यानी हर वो मजहब वाला जो सरीहन शिर्क करता है, बुत परस्ती करे, फायर वर्शिपिंग हो, मजूसी है, किसी इंसान को आगे रख के पूजे, किसी इमाम को पूजे, वो सब मुशरिक है। उनसे तो निकाह ना मर्द का औरत से, ना औरत का मर्द से, दैट्स इट। दूसरी सूरत क्या है कि मर्द किसी अहले किताब औरत से शादी करे, शर्त क्या है, मुहसिना हो, पाक दामन औरत हो, पहली शर्त, यानी वो कोई करप्ट औरत ना हो। फिर दूसरी बात है, जब उससे निकाह होगा तो मेहर मुकर्रर होगा। फिर तीसरी बात यह कि शादी का मकसद सिर्फ सेक्सुअली खुद को एंटरटेन करना ना हो। और पांचवी बात है कि बला मुत्तखिजी अखदान, पहले से छुपी दोस्तियां ना हो। अब आप इन चार रूल्स को सामने रखिए, और फी समाना जो मुस्लिम लड़कों की शादियां नॉन मुस्लिम लड़कियों से होती हैं उसको सामने रख के देख लीजिए। आखिरी बात जिसको अल्लाह ने मना किया, बात ही उससे शुरू होती है। दोस्ती तो पहले हो जाती है, शादी तो बाद में होती है। तो लिहाजा अगर कोई किताबी औरत एथियस ना हो, वो खुद को ये ना कहे कि मैं गॉड को ही नहीं मानती और जीसस को वो खुदा कहने लग जाए, असल अकायद जो होते अगर उस पर मौजूद है तो कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक बहुत बिग डिफरेंस हो जाएगा उसकी सोच और आपकी, और पता चला कि वो संडे को जाती है, आप जुम्मे को जाते हैं, बच्चे सैटरडे को जाने लग जाए, और ये आज के दौर का उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। जब हमने उन सारी चीजों को अपना लिया जो उन कौमों के रिवाज थे, तो शादी करना भी कोई मुश्किल नहीं रहा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे लिए ऐसी आजमाइशें ना रखे कि जिसको हम निभा ना सके। देखिए इस आयत के बाद कुफर का लफ्ज आया, और हजरत उमर ने तो अपने दौर में पाबंदी लगा दी थी। जब देखा कि लोग अहले किताब औरतों से शादियां करने लगे, कहने लगे फिर सीधी सादी भोली भाली औरतें मुसलमानों की, उनको कौन रिश्ता देगा। तो आपने वक्ती तौर पर पाबंदी लगा दी थी, और एक मुसलमान हुक्मरान को इजाजत थी कि ऐसा ना करो, जो भी वो कर सकते थे करते। ये बात कोई नहीं आम करता। वो लोग जो हजरत उमर के नाम पर 20 तरावियों की मिसाल देते हैं, वो कभी भी ये मिसाल देते हुए नहीं दिखाए जाते। तो देखिए अल्लाह का वाज़े हुक्म है, अगर आपका अपना बच्चा सही दीन पे है ना, मुस्लिम है, वल्लाही वो कर ले किसी किताबिया से, एक साल के अंदर वो लड़की मुसलमान हो जाएगी, आई एम श्योर। लेकिन मेरे पास 2 से ज्यादा तो इस वक्त भी मुझे याद है केसेस के, बॉयफ्रेंडशिप गर्लफ्रेंडशिप के नतीजे में एक मुसलमान लड़के की शादी किसी क्रिश्चियन से जू से हुई, और वो लड़की किसी भी असर में आके मुसलमान हुई, और 2-4 साल बाद उसने उससे डाइवोर्स ले ली कि ही इज नॉट अ गुड मुस्लिम। और एक दो ने उसने लड़की को तलाक दे दी कि जिससे मैंने शादी की थी वो तो कोई और लड़की थी, ये तुम की दीनदार हो गयो। यदि मुसलमान लड़का प्रैक्टिकल नहीं था, उसने प्रैक्टिसिंग लड़की को तलाक दे दी, तो ये तो फिर अपने ऊपर इल्जाम लेने वाली बात है। आप अपने बच्चों के दिल में ईमान डालें, प्यार डालें इस्लाम का, फिर उन्हें कहें करें नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादियां, आप ढूंढिए उनके लिए नॉन मुस्लिमों में अगर हैं कोई अच्छी लड़कियां जो इस्लाम से इंक्लाइंड हैं या न्यू मुस्लिम है, शादियां करवा दीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जब आप अपना ही वो पिलर ढीला है तो वो इस्लाम क्या होगा। ऐसी कई कहानियां आपने भी सुनी होंगी कि वो कहती हैं कि मैं जुम्मे को मस्जिद में जाती हूँ, ये मिस्टर संडे को चर्च में जाते हैं, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग वेरी हैप्पी लाइफ फ्रॉम 25 ईयर्स। तो फिर ये तो कहानी नहीं होगी ना। तो अल्लाह ताला दुआ करें कि हमें इस चीज की समझ दे दे।